भाग्यवान हैं वो सब मनुष्य आत्माएं जिन्हें इस अंतिम जन्म में स्वयं भगवान मिला। उनके भाग्य के क्या कहने, जिनका श्रृंगार करने, वरदानों से जिनकी झोली भरने के लिए स्वयं भाग्य विधाता चलकर उनके पास आ गया, जिसे हम जन्म जन्म बुलाते थे, जिसके क्षणिक दर्शनों के लिए इंतजार किया करते थे, जिससे मिलने के लिए अपना सर्वस्व त्याग करने के लिए तैयार रहते थे, अपने को कुछ भी कष्ट देने में पीछे नहीं रहते थे, वो स्वयं चलकर जिनके पास आ गया। ऐसी ब्राह्मण आत्माएं सचमुच इस संसार में सबसे महान और सबसे भाग्यवान हैं। अपने जीवन के इस महत्व को हम सभी ब्राह्मण बहुत अच्छी तरह समझ लें। ये समय और ये जीवन बहुत ही मूल्यवान है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यदि हम इस समय को और अपने जीवन को, इसके एक एक संकल्प को, इसमें होने वाले प्रत्येक कर्म के महत्व को अच्छी तरह समझ लेंगे तो हम कभी भी अलबेले नहीं होंगे। हम जानते हैं आज संसार अपनी तमोप्रधान स्थिति के भी अंतिम चरण में है। यहाँ वातावरण भी दूषित है, यहाँ मनुष्यों में भी अनेक विकृतियां आ गई हैं और सभी ब्राह्मणों को उनके ही बीच में रहना पड़ता है। ऐसा समझें कि बीच में एक सुगंधित पुष्प खिला हुआ है और चारों ओर सूखे सूखे कांटों के पेड़ हैं, जिनमें आग लगती है, कभी बुझती है, डर है पता नहीं कब आग लगकर सब कुछ भस्म कर दे, लेकिन चमकते हुए पुष्प, महकते हुए पुष्पों की सुगंधि चारों ओर फैलेगी ही। इसलिए हमें अपने इस जीवन को साधारण न समझते हुए, अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न जानते हुए अपने को आनंद में और खुशी में रखना है। हम जानते हैं हमारा एक एक सेकंड वर्षों के समान है। ये ब्राह्मण जीवन सचमुच भाग्यवान आत्माओं को ही प्राप्त हुआ है, क्योंकि स्वयं भगवान ने हम सबको एडॉप्ट किया है, अपनी गोद का बच्चा बनाया है। उसने हमें दिल से स्वीकार कर लिया, तुम बच्चे मेरे हो। साथ में एक बहुत बड़ी बात कह दी, एक बहुत बड़ा अधिकार दे दिया, बच्चे मैं भी तुम्हारा हूँ। भगवान को जिन्होंने अपना मान लिया, जिन्होंने उस सर्वशक्तिवान को अपना बना लिया, वे ब्राह्मण इस संसार में सर्वश्रेष्ठ हैं, उनका बहुत बड़ा महत्व है। बाबा के ये शब्द हम सभी को याद करने हैं। इस तरह सभी विजन बनाएं कि स्वयं बाप दादा नीचे आकर कह रहे हैं, बच्चे तुम साधारण नहीं हो, बहुत महान हो। तुम्हारा ये ब्राह्मण जीवन बहुत अनमोल है, पहचानो अपने को। माया के इस जंजाल में, दूषित वातावरण के प्रभाव में अपनी महानताओं को भूल न जाओ। दूसरी बात भी याद करें, बाबा नीचे आकर हमें याद दिला रहे हैं, बच्चे तुम पूर्वज हो, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तुम्हें संसार की पालना करनी है, तुम पूर्वज आधार मूर्त हो, तुम यदि हलचल में आओगे, तुम यदि स्वयं हिलोगे, तुम्हारी स्थिति यदि बिगड़ जाएगी तो सोचो इस संसार का क्या होगा। बहुत महत्व है ब्राह्मण आत्माओं का, जो भगवान के बन गए, जिन्होंने अपने जीवन को पवित्र बना लिया है, जो कदम कदम पर अपना श्रेष्ठ भाग्य निर्माण कर रहे हैं। सोचो जिनको स्वयं भगवान गाइड कर रहे हो, विचार करो आगे बढ़ने के लिए जिन्हें सर्वशक्तिवान स्वयं शक्तियां प्रदान कर रहे हो, माया के इस युद्ध में विजयी बनाने के लिए सद्गुरु स्वयं जिनको हर कदम पर नए नए दांव सिखा रहे हो, वो कितने भाग्यवान होंगे। अपने इस महत्व को समझकर हम अपने लक्ष्य को पुनः सुदृढ़ करें। अनेक ब्राह्मण आत्माएं दूसरों को देखकर कार्य व्यवहार में व्यस्त होकर या परिवारों के झंझटों में उलझकर अपने महान लक्ष्य को भूल गई हैं। सच है ना, भूल गई हैं बहुत आत्माएं। यदि हम अपने महान लक्ष्य को याद रखें तो ये संसार हमारे लिए खेल बन जाएगा, क्योंकि हम इतनी शक्तियां अर्जित कर सकते हैं, हम अपनी बुद्धि को इतना रिफाइन बना सकते हैं, हम अपनी स्थिति को इतनी शक्तिशाली बना सकते हैं कि माया आए विघन आए, परिवारों में परिस्थितियां आए और हम अचल अडोल रहें, हमें अचल अडोल देखकर परिस्थितियां स्वयं हार मान लें, माया स्वयं परास्त होकर वापस चली जाए, विघ्नों की दीवारें ढह जाएं, ये सब संभव है। इसलिए ब्राह्मणों का जीवन बहुत महान है तो लक्ष्य भी बहुत महान है। हमें कर्मातीत होना है, हमें संपूर्णता को प्राप्त करना है। इतना ही नहीं, हमें संसार में रहते हुए कमल फूल समान रहकर संसार के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करना है। हमें दिखाना है संसार को कि हम भी उसी संसार में रहते हैं जो विघ्न और समस्याओं से भरपूर है, लेकिन हम तनाव मुक्त हैं, हम सरल चित्त हैं, हम परमात्म शक्तियों के भरोसे सदा निश्चिंत हैं और इन सभी चीजों पर विजयी हैं। ये भी हमारा महान लक्ष्य है। हमारा महान लक्ष्य अपने को संपूर्ण पवित्र बनाकर इस संसार को बदलना भी है। हम एक महान और सत्य देवी देवता धर्म की भी स्थापना कर रहे हैं। हम जानते हैं आज तक जिन्होंने भी धर्मों की स्थापना की उन्हें कष्ट तो उठाने पड़े, लोगों के विरोध तो सहने पड़े, बाद में लोगों ने उनको आगे चलकर पूजा, लेकिन उस समय उन्हें संघर्ष में जीवन व्यतीत करना पड़ा। हम सब देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, पवित्र धर्म की स्थापना कर रहे हैं, ब्राह्मण धर्म पर आगे बढ़ रहे हैं। विघ्न चुनौतियां तो हमारे सामने अवश्य आएंगी, लेकिन हमें अचल अडोल रहकर अपने कर्तव्यों को पूर्ण करना है। तो बहुत बड़े बड़े लक्ष्य हमारे सम्मुख हैं। हमें सर्व शक्तियों से स्वयं को सुसज्जित करना है, सब खजानों से स्वयं को भरपूर करना है। तो हम सभी अपने इस समय के महत्व को अच्छी तरह पहचान लें। ये संसार तो चलता जा रहा है, ये सृष्टि का चक्र, ये विश्व का ड्रामा अपनी गति से निरंतर आगे बढ़ रहा है। हम पुरुषार्थ करें या न करें, सेवाबा तो सतयुग रचकर वापिस चला जाएगा। हमें विचार करना है हम संगम युग के इस अनमोल समय को किस किस तरह से व्यतीत करें, क्या संसार में उलझ कर रह जाएं? जिस तरह संसार धन साधनों पद पोजीशन मान सम्मान के पीछे भाग रहा है, क्या हमारा जीवन भी इसी तरह भागते भागते समाप्त हो जाए? हमें विचार करना है क्या उलझनों में उलझ कर हम संपूर्ण ईश्वरीय सुख को पा सकेंगे? उलझने अनावश्यक रूप से आई हैं या हमने उनको क्रिएट किया है? ब्राह्मण ब्रह्मावत्स भगवान के बच्चे गहनता से चिंतन करें, क्या किया जा सकता है इस संगम युग पर, हमें क्या नहीं करना चाहिए इस पुरुषोत्तम काल में, इस पर गंभीरता से विचार करें। बुद्धिमान वही है जो ब्राह्मण समय को पहचान कर इसका सदुपयोग करे। बुद्धिमान वही है जो आए हुए परमात्मा से सब कुछ प्राप्त कर ले। बुद्धिमान वही है जो भगवान से अपना जन्म जन्म का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त कर ले, भगवान दाता बनकर देने आया हो, खुले आम ऑफर कर रहा हो, सब खजाने और वरदान हमारे सम्मुख लेकर आ गया हो और हम सोए रहें, हम उलझनों में जीवन व्यतीत करते रहें, हम मोह माया में पड़कर परमात्म दृष्टि को भी प्राप्त न कर पाए, उसकी अनुकंपा के भी अधिकारी न बन पाए, तो हमें कौन समझदार कहेगा? तो हम सभी ब्रह्मावत्सों को, जिनके साथ दो महान शक्तियां निरंतर सहयोग कर रही हैं, एक प्रजापिता ब्रह्मा और दूसरा सर्वशक्तिवान निराकार शिव बाबा, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं, आओ हम सभी संपूर्णता की ओर आगे बढ़ें, क्योंकि हमारी संपूर्णता का प्रकाश ही इस जग से माया के और अज्ञान के अंधकार को दूर करेगा। जब तक हम संपूर्ण बनकर इस काली घोर रात्रि में संपूर्ण चंद्रमा की तरह नहीं चमकेंगे, तब तक यहाँ का अंधकार विलीन नहीं होगा, तब तक आत्माएं अपनी मंजिल को नहीं देख पाएंगी। अज्ञान में भटके विभिन्न दर्शनों के भ्रम में उलझे हुए लोग तब तक सत्य को नहीं पहचान सकेंगे। तो मैं उन सब को विशेष रूप से कहूंगा, जिन ब्राह्मणों के मन में शिव बाबा को प्रत्यक्ष करने की तीव्र उत्कंठा है, मैं उन सबको कहूंगा जो चाहते हैं कि हम सबसे पहले संपूर्ण बनकर अपनी श्रेष्ठ मंजिल पर पहुंच जाएं। मैं उन बाबा के बच्चों को कहूंगा जो ये चाहते हैं हम आदर्श प्रस्तुत करें, हम एक ऐसी राह का निर्माण करें जिस पर चलकर लाखों और करोड़ों लोग अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। हमें ये नहीं सोचना है कि इतने वर्षों से अनेक महान पुरुष संपूर्णता को नहीं प्राप्त कर सके। हम कल आए हुए, 2 साल से ज्ञान लिए हुए, 5 साल से इस मार्ग पर चलने वाले भला इस महान मंजिल को कैसे प्राप्त करेंगे। कई बाबा के बच्चे बाबा का ही उदाहरण देते हैं कि स्वयं ब्रह्मा बाबा को संपूर्ण बनने के लिए 33 वर्ष तपस्या करनी पड़ी, क्या हमें भी 33 वर्ष मिलेंगे। तपस्या एक ऐसा श्रेष्ठ साधन है जिसके लिए आप सब जानते हैं भगवान उवाच है, यदि तपस्या में हमारी मन और बुद्धि स्थिर हो जाए तो संपूर्ण बनने में 33 वर्ष की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मन भटकता है, बुद्धि अस्थिर रहती है तो हम सर्वशक्तिमान से संपूर्ण शक्तियां प्राप्त नहीं कर पाते, हम स्वयं को संपूर्ण पवित्र नहीं बना पाते। इसलिए लंबा समय तो केवल उन आत्माओं को लग रहा है जिनकी मन और बुद्धि स्थिर होने में देर कर रही है। ये बात सुनकर शायद आप में से कई सोचते होंगे कि अनेक महारथी क्या अपनी बुद्धि को स्थिर नहीं कर पाते हैं। यहाँ मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपके सामने एक बात रख दूं, हमारे ब्राह्मण परिवार में महारथियों की 2 लेवल हैं। एक लेवल है सेवाओं के महारथी जिन्होंने आज तक सेवाओं के फील्ड में बहुत अच्छे कार्य किए हैं, अपना सर्वस्व कुर्बान किया है, निश्चित रूप से मैंपन को त्याग कर निमित्त भाव से दूसरों को सुख देते हुए जो सेवाओं में अग्रणी रहे हैं उनका भी अपना महत्व है। परंतु सच्चे महावीर और महारथी वो हैं जिन्होंने अपनी स्थिति को योगयुक्त बनाया है, जिन्होंने ज्ञान चिंतन के द्वारा ज्ञान का बल जीवन में धारण किया है, जिन्होंने अपनी साधनाओं के बल पर स्वयं को पवित्रता में बहुत अच्छी स्थिति तक पहुंचाया है, जिन्होंने बाबा के द्वारा बताए हुए सर्व गुणों को अपने जीवन में अंगीकार किया है। ऐसी आत्माएं इस संसार के लिए बहुत बहुत कल्याणकारी हैं, जिनकी स्थिति महान है। जैसा कि हमने याद दिलाया बाबा का महावाक्य कि हम पूर्वज हैं सभी, जिनकी स्थिति महान है उनका प्रभाव इस संसार की अनेक आत्माओं पर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। मैं आप सभी को इसके लिए बाबा की एक बहुत गुह्य बात याद दिलाना चाहूंगा। पीछे बाबा ने कहा, तुम पूर्वज हो, तुम्हारे पुण्य कर्मों का प्रभाव सभी धर्मों की आत्माओं पर पड़ता है, तुम्हारे पुण्यों का फल और बल संसार की अनेक आत्माओं को जाता है, इसलिए उसका फल और बल तुम्हें भी पदम गुना प्राप्त हो जाता है। सोचें, यदि हमारे संकल्प महान हैं तो हमारी संपूर्ण वंशावली के संकल्प महान होंगे, यदि हमारी पवित्रता श्रेष्ठ है तो हमारी संपूर्ण वंशावली की पवित्रता भी श्रेष्ठ होगी, यदि हमारा मन शांत है, यदि हम निरंतर खुशी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो क्योंकि हम पूर्वज हैं सभी धर्मों को भी वैसा ही अनुभव होगा, वो भी खुशी और शांति का अनुभव करते रहेंगे। यदि हमारे संकल्प महान है, यदि हम बहुत योगयुक्त हैं, यदि हम सदा शक्तिशाली स्थिति में रहते हैं तो हमारी शक्तियों के वाइब्रेशंस इस पूरे कल्प वृक्ष को शक्ति प्रदान करते रहेंगे। अपने इस महत्व को जानकर आओ हम सभी चारों ओर से आंखें बंद कर लें और संपूर्णता की ओर चलें, क्योंकि बाबा ने एक बहुत अच्छी बात इसके लिए हमें कही है जिसको हम आधार बना लें अपना। बाबा एक उदाहरण दिया करते हैं, माताओं को ज्ञात होगा जब हम हलवा बनाते हैं तो हलवा जब तैयार हो जाता है तो कढ़ाई के बर्तन के किनारे छोड़ देता है। ऐसे ही जैसे ही हम तैयार होंगे, जैसे ही हम संपूर्णता के समीप पहुंचेंगे, हम सभी किनारे छोड़ देंगे। हमने पकड़े हुए हैं ना बहुत से किनारे, मोह माया के किनारे, साधनों के किनारे, अपने काम धंधों के किनारे, इच्छा और आसक्तियों के किनारे, बहुत सारे किनारे मनुष्य ने पकड़े हुए हैं। वो साधना के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है लेकिन चारों ओर जो रस्सियां बांधी हुई हैं वो उसको उड़ने नहीं देती, पहले हमें इन रस्सियों को ढीला करना पड़ेगा। तो हम अपने सभी किनारे छोड़ देंगे, तो संपूर्णता की और भी आगे चलेंगे और यही संपूर्ण आत्मा का लक्षण भी होगा। एक और बहुत सुंदर बात मैं आपको याद दिला दूं, विस्तृत चर्चा इन सभी बातों की हम आगे करेंगे। बाबा ने एक बहुत सुंदर डेफिनेशन दी है, परफेक्ट मीन्स बियॉन्ड इफेक्ट। परफेक्ट अर्थात संपूर्ण बनना, अर्थात सभी तरह के इफेक्ट से, प्रभावों से परे हो जाना, जिसको कभी बाबा इन सरल शब्दों में भी कहा करते हैं, जो फीलिंग प्रूफ है वही फुल है। संपूर्ण वही है जो सभी तरह की निगेटिव फीलिंग से परे हो जाए, उससे मुक्त हो जाए। तो एक बहुत ऊंची मंजिल हमारे सामने है, निसंदेह एवरेस्ट पहाड़ी की चोटी से भी ऊंचा जाना है संपूर्णता की मंजिल पर। आज एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने में तो अनेक लोग सक्षम हो रहे हैं, परंतु संपूर्णता की मंजिल बहुत ही सूक्ष्म है, क्योंकि इसमें हमें अपनी सभी कमियों को छोड़कर सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी बनना होता है। बाबा के तीन अंतिम शब्द हमें संपूर्णता की बिल्कुल स्पष्ट झलक देते हैं, बच्चे निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बनो। संपूर्ण स्थिति में हमारी ये स्थिति आ जाती है। दूसरे भी बाबा के बहुत अच्छे शब्द हैं जो आजकल बहुत प्रयुक्त होते हैं, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी, निर्वाण स्थिति, ये सब हमारी संपूर्णता के प्रूफ हैं। जब हम अपनी संपूर्णता के समीप पहुंचते हैं तो हम संपूर्ण रूप से नष्ट मोह और स्मृति स्वरूप बन जाते हैं। संपूर्ण रूप से स्वमान में स्थित हुई आत्मा ही संपूर्ण स्वरूप को प्राप्त करती है। ऐसे में हम एक से निरंतर योग युक्त हो जाते हैं। संसार के किसी भी आकर्षण की ओर हमारा झुकाव नहीं बढ़ता। संसार की कोई भी प्राप्ति, कोई भी साधन हमें अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है। तो संपूर्णता की एक बहुत सुंदर मंजिल है। इस मंजिल पर चलने के लिए हमें बहुत अच्छी साधना भी करनी होती है, और इस मंजिल पर चलते चलते आत्मा अतींद्रिय सुख से भी स्वयं को भरपूर महसूस करती है। ये केवल साधना नहीं, ये बहुत बड़ा सुख है। ये केवल त्याग नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ा भाग्य समाहित है। तो हम सभी संकल्प करें, हमें संपूर्ण बनना है। हम जानते हैं संपूर्ण तो बनाकर हमें बाबा ले ही जाएगा, लेकिन जो आत्माएं अपने पुरुषार्थ से संपूर्ण बनेंगी वो इस यात्रा का बहुत ज्यादा सुख प्राप्त करेंगी। अन्यथा सजाओं के द्वारा कर्मातीत होना है, संपूर्ण होना है, उसमें आत्मा इन सुखों से वंचित हो जाएगी। ये संपूर्ण स्थिति हमें संपूर्ण शक्तिशाली बना देती है। हमें याद रखना है, जब हम संपूर्ण शक्तिशाली बन जाएं, जब हमारी स्थिति अचल अडोल हो जाए, जब हमारे चित्त में सभी के लिए निर्मल स्नेह और निस्वार्थ रूप से शुभ भावनाएं हो जाएं, जब हमारे चित्त में छुपे हुए सूक्ष्म से सूक्ष्म विकार भी नष्ट हो जाएं, ऐसी स्थिति संपूर्ण स्थिति कहलाती है। निसंदेह इसमें हमें साधना करने की मेहनत तो करनी पड़ेगी, परंतु क्योंकि हमारा गाइड स्वयं भगवान है, हमारा गाइड स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा भी है, जिसने अपनी साधनाओं के बल पर, जिसने अपनी तपस्या के बल पर संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया, इन दो की प्रैक्टिकल गाइडेंस में हम स्थिति को सहज प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बात वही है कि हमें धुन लगानी पड़ेगी, हमें दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ना पड़ेगा। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो माया या विघ्न या कुछ मनुष्य भी हमें रोकने का प्रयास करते ही हैं। ये भी सत्य है, हमें इस सत्य को भी स्वीकार कर लेना पड़ेगा। इसलिए वो मनुष्य जो किसी के रोके न रुके, वो मनुष्य जो अपने मार्ग पर अपनी महान मंजिल को देखता हुआ निरंतर आगे बढ़ता रहे, वो मनुष्य जो दूसरों के शब्दों से प्रभावित न हो, जो मान सम्मान, हार जीत, अपमान, निंदा स्तुति, इन सभी में समान रहकर अड़ोल स्थिति को लेकर आगे बढ़ता रहे, इस मंजिल पर पहुंच सकता है। तो हम सभी धुन लगाएं कि हमें संपूर्ण बनना है। हम नहीं बनेंगे तो भला और कौन संपूर्ण बनेगा? हम संपूर्ण बनेंगे, हमारी चारों ओर की प्रकृति सत्व प्रधान बन जाएगी। हम संपूर्ण बनेंगे तो अनेक ब्राह्मण आत्माओं को संपूर्ण बनने का मार्ग दिखाई देगा। उनके मन से ये भावना समाप्त हो जाएगी कि वो संपूर्ण नहीं बन सकते और बाबा का निरंतर प्यार हम पर बरसने लगेगा। बाबा ने कह दिया है, जब तुम बाप समान बनोगे तब ही तुम्हारे द्वारा बाप के साक्षात्कार होंगे। तो कितना सुंदर हो कि हम संपूर्ण बनकर इस संसार की सभी आत्माओं को बाबा का साक्षात्कार कराएं, हमारे स्वरूप में लोग भगवान को देख सकें, हमारे स्वरूप को देखकर उनकी चिंताएं मिट जाएं, उनके दुख दर्द समाप्त हो जाएं, उनके रोग समाप्त होने लगें। ये है संपूर्ण स्थिति। तो आओ हम सभी धुन लगाएं, अपना स्वयं प्लान बनाएं, अपने योग के अभ्यास को आगे बढ़ाएं और उन सब चीजों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं जो हमारी इस मंजिल पर पहुंचने में बाधक है। तो निश्चित रूप से बाबा ने हमारा हाथ पकड़ा है, उसका सहयोग हमारे साथ निरंतर काम कर रहा है। हम तो बस एक कदम आगे बढ़ेंगे, वो हमें संपूर्ण बनाने के लिए तैयार बैठा है। उसका तो कर्तव्य ही ये है और वो और हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं, बिना संपूर्ण बने ये कार्य भी संपूर्ण नहीं होगा, ये संसार भी समाप्त नहीं होगा और स्वर्ग की स्थापना में देर लग जाएगी। तो चलें हम सभी बड़ी उमंग उत्साह के साथ संपूर्णता के पथ पर कदम आगे बढ़ाएं। ओम शांति।